उधर अयांश नहाकर बाथरूम से बाहर निकला। उसने काली लोवर टी शर्ट पहनी और आईने के सामने आ खड़ा हुआ। गले में टंगे तौलिए से उसने सिर पोंछा और उसे ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। फिर आईने में खुद को देखकर बालों में हाथ घुमाने लगा, पर तभी उसके हाथ बालों में ही रुक गए और अयांश हंस पड़ा। आरवी की आज की हरकतें ही उसके हंसने की वजह थीं। अयांश ऐसे हंस रहा था मानो उसे खुशी का खजाना मिल गया हो। आरवी की हरकतों के बारे में सोचते हुए अयांश ने हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिया। तभी वहां राधे आया। अयांश को हंसता देख वो बाहर छिपकर खड़ा हो गया और अंदर झांक कर चुपके से अयांश को हंसता देख मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से बोला,
अयांश बाबा हंस रहे हैं, मैंने इतना हंसते हुए तो आज से पहले कभी नहीं देखा। गुस्से से ज्यादा तो ये हंसते हुए अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा हंस रहा है। कॉफी का बाद में आकर पूछूंगा, पहले मालिक को बताता हूँ ये बात, जाकर सुनेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे।
राधे वहां से धीरे धीरे चलता हुआ वापस खिसक गया। अयांश ने हंसते हंसते खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद आज खुलकर हंसा था, इसीलिए ये खुशी के आंसू थे। शायद अरसे बीत गए होंगे अयांश को ऐसे पागलों की तरह हंसे हुए, या कभी हंसा ही नहीं था वो ऐसे। कब हंसा था उसे खुद याद नहीं था। राधे तो फिर भी सालों से यहाँ काम कर रहा है, उसका कहना भी सही था कि उसने अयांश को ऐसे हंसते कभी नहीं देखा। शायद कोई जानता ही ना हो कि अयांश ऐसे हंस भी सकता है। दिनकर जी को भी इस बात की खबर लगने वाली थी, पर यकीनन वो भी अयांश का हंसना भूल चुके होंगे, क्योंकि अयांश को उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते देखा है, वो भी खुलकर नहीं। पर चाहा जरूर है उन्होंने कि वो खुलकर हंसे, तो आज तो राधे जैसे उनको भी हैरानी होने वाली थी, क्योंकि अयांश खुद हैरान हो रहा था। उस वक्त उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की, पर वो कभी रुक रही थी तो कभी फिर उसके होठों पर बिखर रही थी। अयांश ने दरवाजे की ओर देखा और आंखें पहुंचते हुए फट से दरवाजा बंद कराया और फिर आईने के सामने आ खड़ा हुआ। ये सब इसलिए किया ताकि कोई उसे ऐसे ना देख ले। कुछ पल बाद अयांश अपनी हंसी रोकने में कामयाब हो गया और कसकर अपनी आंखें और मुट्ठी भींच ली। तभी किसी ने अयांश के कंधे पर हाथ रखा। अयांश ने फट से आंखें खोली और उसका ध्यान अपने पीछे खड़े शख्स पर गया। अयांश पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। तभी अयांश के पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं। अयांश ने वापस घूमकर आईने की ओर देखा तो विनित ड्रेसिंग टेबल के पास वहीं खड़ा था। अयांश ने उसकी ओर हैरानी से देखा तो वो हाथ बांधे ड्रेसिंग टेबल से सटकर खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हाल भाई, हंसकर बेहाल किया जा रहा है खुद को, भौहें उचकाते हुए। इतना असर उसका और उसकी बातों का, अब मुंह मत मोड़ना क्योंकि साफ दिख रहा है। देखो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, कैसे हंस रहा था, वाह पागलों की तरह लग रहा है ना। बरसों बीत गए तुझे ऐसा खुलकर हंसे हुए, या कभी हंसा ही नहीं ऐसे। ऐसा लग रहा है हंसी वाला स्प्रे तुझ पर छिड़क दिया किसी ने। लोटपोट होते हैं ना जब उसकी चपेट में आते हैं या कोई मजेदार जोक सुन लेते हैं तो हंसी पर काबू नहीं रहता, वैसे तू आरवी की चपेट में आकर अंदर से खिल उठा भाई, खिल उठा, खुद पर काबू नहीं हुआ, हंसी रोकने में वक्त लगा तुझे। वेट वेट, कहीं विनित की बात सच तो नहीं होने वाली, कहीं उस रति भर मोहब्बत पर जो तुम्हारे अंदर उस आरवी के लिए जो नफरत भरी पड़ी है भारी तो नहीं पड़ रही है ना वो। अगर ऐसा है फिर तो बेटा तू गया, कितनी नफरत निभाएगा उससे जिससे थोड़ी सी मोहब्बत भी है। नफरत भरी गगरी जो है दिल छलकी, उससे तेरी थोड़ी सी मोहब्बत तुझे बदल तो नहीं रही है ना अयांश, रोक तो नहीं देगी ना तुझे। माना तेरी नफरत में शिद्दत है, पर सुना है ना मोहब्बत में ताकत बहुत होती है। लग रहा है आरवी तुझ पर छा रही है, तू खो रहा है उसमें खुद को। जैसे ही अयांश ने यह सुना उसने अंगुली दिखाते हुए कहा, जस्ट शट अप, मुंह बंद करो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत है मुझे उससे, ये विनित जैसी बकवास करना बंद करो। ओके ओके कूल डाउन ब्रो, अच्छा ये बताओ ऐसा कुछ नहीं है तो हंस क्यों रहे थे, अयांश उसकी ओर पीट करते हुए बोला। वो मैं तो उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था, पागल है, सोच रही मुझे परेशान करे या ऐसी हरकतें करे मुझे हरा देगी या जो चाहती है वो कर लेगी, पर मैं ऐसा कुछ होने दूंगा तब ना, तंज गरी मुस्कान होठों पर लाते हुए। अयांश मेहरा से पंगा लेना मतलब बर्बाद होना, और वो यही कर रही है, तो हंस रहा हूँ उसकी नादानी भरी बेवकूफ़ियों पर कि मुझे हराने की कोशिश कर रही है जो कभी नहीं हो सकता है। ये सुन अयांश के पीछे खड़ी जो परछाई थी वो ताली बजाकर हंस पड़ी, पर जैसे ही अयांश गुस्से से दांत भींचते हुए पीछे की तरफ तेजी से मुड़ा, तुम, तभी वो सामने से गायब हो गया। अयांश इधर उधर देखते हुए अपना माथा खुजाते बोला, ये क्या था, क्या सोच रहा था मैं, और मेरी शैडो विनित जैसी बातें, नेवर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। आई थिंक आज उस आरवी के चक्कर में जो माइंड खराब हुआ है मेरा उस सबसे ये हो रहा है, टेक रेस्ट अयांश। अयांश फट से बिस्तर पर जा बैठा, ब्लेक एंड पैरों पर डाला और लाइट बंद कर लेट गया, और कुछ पल बाद ही अयांश को नींद आ गई। विनित घर पहुंचा तो रामू काका उसका इंतजार कर रहे थे। विनित को धीरे धीरे अंदर आता देख रामू काका उसकी तरफ आए और उसके हाथों पर टंगे कोट को लेते हुए बोले, बेटा ये कोई वक्त है घर आने का, देखो कितना लेट हो गया है, रात के 2 बज रहे हैं। फोन किया तो भी नहीं उठाया और ना बताया कब तक लौटोगे। पर विनित कुछ नहीं बोला और दरवाजे से धीरे धीरे चलता हुआ हॉल में चला आया। ये देख रामू काका हैरान और परेशान हो गए और विनित के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते बोले, विनित बेटा। तभी विनित ने उनकी तरफ ध्यान दिया और मुड़ते हुए बोला, हाँ रामू काका, थकी सी आवाज में। ये देख रामू काका ने विनित की ओर गौर से देखा और बाहों पर हाथ रखते बोले, सब ठीक है ना? ध्यान कहाँ है आज तुम्हारा? थक गए हो या तबीयत ठीक नहीं है? तभी विनित कुछ कहने को हुआ कि हॉल में लगी वर्तिका की बड़ी सी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। विनित उस तस्वीर के पास गया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम बैक वर्तुदी, वेलकम बैक। और तभी वर्तिका की तस्वीर से फूलों का हार उतारकर साइड में फेंक दिया और तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। ये देख रामू काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हाथ में जो विनित का कोट था वो नीचे गिर गया। वे हैरानी और तेज कदमों से उसके पास आए और पीछे से कंधे पर हाथ रखते बोले, ये सब क्या है विनित? वर्तिका बिटिया की तस्वीर से ये हार क्यों उतार दिया? ये तो तुम हर सुबह करते हो ना, नया हार बिटिया की तस्वीर पर चढ़ाते हो। पर अब तो रात है, आज सुबह ही तुमने फूल और हार चढ़ाया और अब नया हार भी नहीं लेकर आए हो तुम, फिर क्यों उतार डाला? विनित से सवाल करते हुए। विनित तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, आज के बाद मैं कभी हार नहीं चढ़ाऊंगा दी की तस्वीर पर रामू काका, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे ही विनित ने ये बोला, रामू काका ने विनित को फट से अपनी तरफ घुमाया और बोले, मतलब पता भी है क्या बोल रहे हो? विनित नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, दी जिंदा है रामू काका, मेरी दी और आपकी लाडली वर्तिका बिटिया जिंदा है। ये सुन रामू काका के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए, उनकी आंखों में नमी उतर आई। वे कुछ बोलने को हुए कि उनके लव जबान में ही ठहर गए। वे सवाल भरी निगाहों से विनित की ओर देखने लगे तो विनित ने उनके कंधों पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ रामू काका। विनित ने रामू काका को सारी बात बताई। विनित की बात सुन रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। सच कह रहे हो? हाँ, विनित बोला, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हाँ, ये सच है।
विनीत फूट फूट कर रो पड़ा और रामू काका बोलते हुए उनके गले लग गया। दोनों गले लगे रोए जा रहे थे, पर वर्तिका जिंदा है इस बात की खुशी भी उनके चेहरे से झलक रही थी। अयांश अपने कमरे में सो रहा था। जैसे ही अलार्म घड़ी बजी, अयांश ने ब्लैंकेट से हाथ बाहर निकालकर अलार्म बंद किया और मुंह से ब्लैंकेट हटाकर अपनी आंखें मसलते हुए खोली। पर जैसे ही अयांश ने आंखें खोली तो उसके सामने आरवी खड़ी थी, वो भी हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए। ये देख अयांश की जो अब तक पूरी आंखें ना खुली थीं वो फट से खुल गईं। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट साइड में पीछे की तरफ फेंका और झट से बिस्तर पर बैठते हुए बोला, तुम? हाँ पतिदेव, मैं आपकी प्रिय पत्नी। नाम तो पता ही होगा ना, या बताना पड़ेगा? आरवी ने बिस्तर पर अयांश के सामने बैठते हुए बोला। आरवी जैसे ही बिस्तर पर बैठी, अयांश पीछे की तरफ झटका गया और उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयांश को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अभी सोकर उठा है, क्योंकि सुबह सुबह आरवी को सामने पाकर उसके होश, नींद, आलस सब उसी वक्त फुर हो गए। तभी आरवी मासूमियत से बोली, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना? पर मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, कोई पराई स्त्री थोड़ी जो आप ऐसे घबरा रहे हैं। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं अपने पति के पास नहीं, किसी पड़ोसन के पति के पास आई हूँ, जो उसकी बीवी ना देख ले ये सोचकर मुझे सामने देखकर हड़बड़ा गया हो। अरे मैं तो आपकी ही हूँ पतिदेव, सिर्फ आपकी, चिल कर रहा। अयांश गुस्से से बोला, देखो सुबह सुबह शुरू मत हो जाना, कल वाला ड्रामा तो बिल्कुल मत करना। क्या कर रही हो तुम? मेरे कमरे में क्या करने आई हो? बोलो, चिल्लाते हुए क्रमशः।